ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕೀ ನಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ ಪ್ರೇಮ್ ಸೇ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಆದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಂಡ ರಾಧಾ ಕುಂಡಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕಾಮದಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಜಾನಕಿ ಕುಂಡ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುಪ್ತ ಗೋದಾವರಿ ಕೀ ಜಯ ಸತೀ ಅನಸೂಯಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ ಸರಯೂ ದೇವಿ ಕೀ ಜಯ ಯಮುನಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ ಗಂಗಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ ಗೋದಾವರಿ ಕೀ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. तो आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है. तो श्री राम स्तुति थोड़ा हम गाएंगे, आप सुनिए उसको. ध्यायेद जानुबाहुं धृतशर धनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं ನವಕಮಲದಲ ಸ್ವರ್ದಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವಾಮಾಂಗರೂಢ ಸೀತಾಮುಖಕಮಲ ಮಿಲ್ಲೋಚನ ನೀರದಾಭಂ ನಾನಾಲಂಕಾರ ದೀಪ್ತಂ ದದತ ಮರುಜಟಾಮಂಡನಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ಏಕೈಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ಆಪದಾಂ ಅಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಹ ಪತಯೇ ನಮಃ. ರಾಮೋ ರಾಜಮಣಿ ಸದಾ ವಿಜಯತೆ ರಾಮಂ ರಮೇಶಂ ಭಜೇ. ರಾಮೇಣಾಭಿಹತಾ ನಿಶಾಚರಚಮೋ ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ಪರತರಂ ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸ್ಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ರಾಮೇ ಚಿತ್ತಲಯಃ ಸದಾ ಭವತು ಮೇ ಭೋ ರಾಮ ಮಾಮ ಉದ್ಧರ. ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮವರಾನನೇ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರಣಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ರಾಮಂ ವಿನಾ ಕಾಗತಿ. ರಾಮೇಣ ಪ್ರತಿಹನ್ಯತೆ ಕಲಿಮಲಂ ರಾಮಾಯ ಕಾರ್ಯಃ ನಮಃ. ರಾಮಾತ್ರಯಸ್ತಿ ಕಾಲಭೀಮ ಭುಜಗೋ ರಾಮಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ವಶೇ. ರಾಮೇ ಭಕ್ತಿರಖಂಡಿತಾ ಭವತು ಮೇ ರಾಮತ್ವಮೇ ತ್ವಮೇವ ಆಶ್ರಯಃ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ ಧರ್ಮಃ ಸಾಧುಃ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಃ. ರಾಜಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ದೇವಾನ್ ದೇವಾನಾಂ ಇವ ವಾಸವ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅವಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ. ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಂಧೀರಂ ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುನಾಥ ವಂಶಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಬೋಲಿಯೇ. ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ శరణం ప్రపద్యే. శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే. హనుమాన్ స్తుతి. మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూతముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. ఆంజనేయం అతిపాటలానం ననం కాంచనాద్రీమనీయవిగ్రహం కాంచనాద్రీకమనీయవిగ్రహం పారిజాతతరుమూలవాసినం భావయామి పవమానందం పవమానందం. యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం. బోలియే, యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం కృతమస్తకాంజలిం. బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షతాంతకం. అతులబలధామం హేమశైలావదేహం దనుజవనకృశానం జ్ఞానినాం అగ్రగణ్యం సకలగుణనిధానం వానరాణాం మదీశం రఘుపతి ప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి. గోష్పదీ కృతవారీశం మశకీకృత రాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే నీలాత్మజం అంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం కపీశమక్షహంతారం వందే లంకా భయంకరం ఉల్లంఘ్య సింధో సలిలం సలీలం యక్లోక్షోకవన్నిం జనకాత్మజాయాః ఆదాయతేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయం. స్మిక్ శ్లోక్ హై, ఆప్ సబ్ లోగ్ మేరీ బాత్ బోలియే. సకృదేవ ప్రపన్నాయ, సబ్ లోగ్ బోలియే, సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మితి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమ. దదాతి ఏతద్వ్రతం మమ. ఇస్ ప్రకార్ సే హమారీ భారతీయ సంస్కృతి మే బాల్యకాల్ సే సభీ మాతాయే అప్నే బాలకోం కో రామ్ స్తుతి రామ్ రక్షా స్తోత్ర సిఖాతీ హై. ఇస్లియే రామ్ రక్షా స్తోత్ర కిసి కో కంఠస్థ ఆనా యే కోయి ఆశ్చర్య కీ బాత్ నహీ హై, లేకిన్ ధీరే ధీరే వో ఆశ్చర్య కీ బాత్ హో రహీ హై, క్యోంకి హమ్ హమారే బాలకోం కో యే హమారీ సంస్కృతి నహీ దే రహే, భూల్ రహే హై. యే ఐసే హీ బడే హోతే హోతే ముఖోద్గత హో జాతే హై, కంఠస్థ హో జాతే హై. ఆజ్ భీ మేరీ పత్నీ ఔర్ మేరీ పత్నీ కీ మాతా, అభీ హమ్ లోగ్ సాథ్ మే రహతే క్యోంకి వో బీమార్ హై, తో ఆజ్ భీ దోనో శామ్ కో సాథ్ మే బైఠ్ కర్ రామ్ రక్షా స్తోత్ర గాతే హై, ఔర్ బహుత్ సారే స్తోత్ర భీ గాతే హై. క్యోంకి జబ్ దాదీ థీ తబ్ దాదీ నే పితాజీ కో సిఖాయా థా, పితాజీ మాతాజీ నే బాలకో కో సిఖాయా, బాలక అప్నే బచ్చో కో సిఖా రహే హై. ఇస్లియే అలగ్ సే కృష్ణ భావనా మే ఆకర్ అలగ్ సే కోయి శిక్షా ప్రాప్త కర్నే కీ ఇచ్ఛా వైసే జరూరత్ నహీ హోనీ చాహియే, క్యోంకి హమారీ సంస్కృతి మే పరివార్ మే హీ సబ్ కుచ్ హోతా హై అప్నే ఆప్. మే అభీ భీ యాద్ హై కి జబ్ మే మందిర్ మే గయా థా సబ్సే పెహలే, తో వహాన్ పర్ వో హమకో సబ్ కుచ్ సిఖాతే హై, అచ్చీ తరహ సే శిష్టాచార సిఖాతే హై కి కైసే ప్రసాద్ మే బైఠనా హై, ఫిర్ ప్రసాద్ మే కైసే ఆర్తి మంత్ర బోల్నా హై, ఫిర్ మంత్ర కే బాద్ ప్రసాద్ గ్రహణ కర్నా హై, ఫిర్ థాలి మే కుచ్ భీ చీజ్ ఛోడ్నా నహీ హై, హర్ చీజ్ పసంద్ కీ నాపసంద్ కీ జో భీ హో ఏకదమ్ సాఫ్ కర్కే కేవల్ మిర్చి ఛోడ్నా హై, బాకీ సబ్ కుచ్ ఆప్ ఖా సక్తే హై, ఖానా చాహియే. ఔర్ పంగత్ మే పెహలే ఉఠనా నహీ చాహియే, కోయి వరిష్ఠ భక్త కోయి వరిష్ఠ వ్యక్తి ఉఠతా హై తో ఫిర్ ఆప్కో ఉఠనా హై, ఆప్కా ప్రసాద్ పాకర్ హో భీ గయా హో ఫిర్ భీ ఆప్కో ఉఠనా నహీ, ఆప్కో బైఠనా హై, ప్రతీక్షా కర్నే జబ్ వరిష్ఠ భక్త ఉఠేంగే తో ఫిర్ ఆప్కో ఉఠనా హై. तो जब ये मुझे सब बताया गया तो मुझे पता चला कि मुझे बचपन में पिताजी ने सबसे बचपन से ही ये बताया था हमारे घर में। ये भी बताया गया मंदिर में कि प्रसाद लेते समय बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, प्रसाद लेते समय ध्यानपूर्वक प्रसाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो नियम यहाँ पर भी लागू है, हाँ, जब शाम की खिचड़ी खाते हो, दोपहर का मीठा खाते हो, क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि प्रसाद स्वयं कृष्ण है, प्रसाद स्वयं राम है। प्रभु रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र और उनके महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। तो वो कृष्ण, वो राम उस महाप्रसाद के रूप में मेरे समक्ष आए हैं और उन्हें ग्रहण करना मेरा कर्तव्य है, उनका सम्मान करना होगा ग्रहण करके, तो उन पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक घास खाया तो हरि बोल, एक घास खाया तो जय श्री राम, एक घास खाया तो हरे कृष्णा, एक घास खाया तो राधे राधे, ऐसे करना चाहिए। इतने एकाग्रता से ये भोजन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रसाद ग्रहण करते समय बिल्कुल बातें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे याद आया कि हमारे घर पे तो ये रोज का नियम था, हमारे घर में एकदम शांति से प्रसाद पाते थे, कोई बात नहीं करता था, शांति से पा रहे, किसी के भी थाली में कुछ भी बचता नहीं था, ऐसे हाथ किए हुए जो लाइन्स वो भी बचते नहीं थे, पूरा एकदम क्लीन कंप्लीट, दूसरा कोई आदमी प्रसाद पा सकता है उसमें, इतना थाली को साफ करते थे। मेरे पिताजी और हम उस थाली में जल डाल के वो जल भी पीते थे। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ, प्रसाद आप जब पाएंगे ना तो एक मुंह भर के पानी लीजिए, वहीं कुल्ला करके उसको भी निगल जाइए। क्यों? क्योंकि उसके बिना अगर आप कुल्ला करेंगे तो कुछ प्रसाद का जो कण है वो आपके बेसिन में गिरेगा और नाली में चला जाएगा, तो वहाँ प्रसाद का अपमान होगा। इसलिए आपको एकाध कुल्ला जो है वहीं करके निगल के फिर जाके आगे का कुल्ला हाथ सफाई करनी चाहिए। हाथ में भी कुछ कर्ण प्रसाद के रहने नहीं चाहिए, आप पूरे चाट के मुँह में जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये हमारे भारतीय संस्कृति के ऐसे बाय द वे होते हैं, मतलब अपने आप ही हो जाते हैं संस्कार। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से अगर कोई अपने बालकों को ये सब नहीं सिखाते होंगे, अभी आरंभ कर दीजिए, जब तक वो विवाह के योग्य हो जाएंगे और अपनी तरफ से संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाएंगे तब तक सारे संस्कार उनके अंदर आने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जितने आएंगे उतने अंदर वही उनके बच्चों के अंदर आएंगे। सत्य तो ये है कि हमारे अंदर जितना है उससे कुछ कम हमारे बच्चों में आता है, फिर उनके बच्चों में उससे भी कुछ कम आता है, यानी उसका ह्रास जो है वो धीरे 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 होते जाता है, 100% का 80% अगले पीढ़ी में, फिर 60% अगले पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी में 50%। तो क्या होगा, कलयुग का प्रभाव ऐसे कि आगे आगे जाके शून्य हो जाएगा वो, और कुछ तो शून्य हम खुद ही कर रहे हैं। बहुत लोग गर्व समझते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम भगवान भगवान को मानते नहीं हैं, तो उनके घर में कुछ नहीं होता है, ना विग्रह होता है, ना ऑल्टर होता है, ना भगवान का मंदिर होता है, ना भोग लगता है, ना घंटी बजती है, ना शंख बजता है, ना आरती होती है, ना पूजा होती है, ना श्लोक का पठन होता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शास्त्र में लिखा है अगर ब्राह्मण के घर में अगर किसी ने गायत्री जप नहीं किया, जनेऊ नहीं पहना, तो 7 जन्मों तक फिर वो शूद्र बन जाते हैं। सोचिए आप कितना महत्वपूर्ण है ये सब कुछ। इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन ये भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया है, मनुष्य जीवन ये चार्वाक मुनि का सिद्धांत है ना कि कुछ भी करो, घीवम घृतम पिबेत, जो चाहे करो लेकिन घी के साथ खाना खाओ। इसका अर्थ होता है कि सब कुछ भूल जाओ, खाली इंद्रिय भोग करो मस्त से, एकदम बढ़िया से, उससे केवल नरक का रास्ता बनता है और आनंद का रास्ता नहीं बनता है। तो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, ये श्लोक रामायण में बीच में आता है कभी, जब भी हनुमान जी और सभी लोग अभी लंका तक पहुंच गए पार करके, और विभीषण जी अभी रावण के द्वारा क्या कहते हैं उसको, लत्ता प्रहार सहन करके, अपमान सहन करके ठुकराए हुए विभीषण जी आ रहे हैं अपने 4 साथियों के साथ में, आकाश मार्ग से राम के ऊपर, तंबू के ऊपर अजय विराजमान है और निवेदन भेजा है उन्होंने। हाँ, तो देखेंगे वहां पर। तो उस समय सब चर्चा चल रही है, कि इनको लें कि ना लें। तो प्रभु रामचंद्र जैसे तुरंत निर्णय लेते नहीं हैं, हमेशा सबकी परामर्श लेते हैं। उनके मन में कुछ है लेकिन वो सबकी सुनते हैं और सबका सुनकर फिर अपना परामर्श देते हैं। तो बड़े बड़े योद्धा वहाँ बैठे हुए हैं, अंगद, नल, नील, हनुमान, सुग्रीव, जांबुवंत, बड़े बुजुर्ग, विद्या संपन्न, विद्वान, ऐसे महारथी वहाँ बैठे हुए हैं। योद्धा भी है, महारथी भी है, ज्ञानी भी है। सबको पूछते हैं, सब लोग एक वाक्यता से कहते हैं कि इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रावण का भाई है, ये इनका षड्यंत्र है, ये उनका एक नीति है कि वो ऐसा बताएंगे कि मुझे ठुकराया गया, मेरा अपमान हो गया, मैं तो अभी किसी का सहारा नहीं, मैं आपका सहारा ले रहा हूँ, आपके अंदर आएंगे, आपके बीच में बैठेंगे, सारी बातें समझ लेंगे और अपने भैया को बताएंगे और अंदर से आकर भेद कर देंगे। इसलिए युद्ध नीति और तर्कशास्त्र, इस सारे सारे कॉमन सेंस के अनुसार निर्णय यही होगा कि इनको नहीं लिया जाए। कोई भी धोखा, कोई भी क्या कहते हैं, खतरा नहीं बोलना चाहिए हमको। और ये सबकी बातें हनुमान जी शांति से सुन रहे थे। फिर आखिरी नंबर जो है वो हनुमान जी का आया। हनुमान जी को भगवान ने पूछा कि आपकी क्या राय है, तो हनुमान जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि निश्चित रूप से आपको विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। इसका कारण क्या है कि जब मैं सीता जी को खोजने के लिए लंका गया था तो पूरी लंका में रावण का साम्राज्य था और वहाँ पर कोई भी भगवान विष्णु या भगवान के किसी रूप या किसी प्रकार का नाम लेने के लिए वहाँ पर मज्जाव था, किसी को वहाँ पर परमिशन नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। फिर भी इतनी भयंकर नकारात्मक वातावरण में पूरी लंका के अंदर एक ही झोपड़ी थी जिसके अंदर मैंने प्रभु का नाम सुना, आपका नाम सुना। जब मैं आकाश से उठ रहा था तो भी ध्वनि सुनाई पड़ी, राम राम राम। तो कुतूहलवश मैं आकर्षित हुआ और उतरा तो झोपड़ी के अंदर शंख चक्र पद्म गदा के चिन्ह थे, तुलसी महारानी का वृंदावन था वहाँ पर। फिर मैं अंदर चला गया तो विभीषण जी महाराज वहाँ पर एकाग्र होकर, मुझे पता भी नहीं कि मैं आया हूँ, एकाग्र होकर राम 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 जप कर रहे थे। तब मैंने दंडवत प्रणाम किया, उनको मैंने बधाई दी कि इतने बड़े राक्षस साम्राज्य में रहते हुए भी आप ये साहस रख सकते हैं कि प्रभु का नाम ले। हम लोगों को कितना अनुकूल वातावरण है, हम भारतवर्ष में हैं, हमारे राज्य धर्म का राज्य है, संतों ने, भगवान के अवतारों ने यहीं पर अपना अवतार लिया है, लीला किया है, और चाइना में, रशिया में और इतने देशों में कितने बंधन हैं, आप कायदे से जप नहीं कर सकते हैं, बाय लॉ। हमारे देश में आप जुलूस निकाल सकते हैं, कहीं भी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, रोड पे कर सकते हैं, गणपति के समय रोड आधा नाप कर आप मंडप बना सकते हैं, वहाँ पर धूमधाम से भगवान के गीत और शोभा यात्रा कर सकते हैं। किसी भी देश में, धर्म के अनुकूल देश में भी विदेश में ये सब नहीं हो सकता है। जो करना है घर पर करो, जनता में नहीं कर सकते। भारत में जो धर्म को पालन करने की सुविधा है वो कहीं भी नहीं है, ये आपको भारत के बाहर जाकर ही पता चलेगा। और कितने ऐसे अन्य देश हैं, उनके धर्म के अलावा वहां पर कुछ नहीं कर सकते आप। फिर भी हमारे लोग जो है धन की लालसा से पूरे धर्म का त्याग करते हुए, तिलांजलि देते हुए, केवल रुपये के लिए और डॉलर के लिए और रियाल के लिए और दिराम के लिए वहां पर जाकर रहते हैं, अपना जमीन, धर्म, आस्था सब बेच देते हैं केवल धन के लिए। ये बड़ी क्या कहते हैं ना, शर्म की बात है। तो ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारी अनुकूलता कितनी महान है, हमारे देश की भूमि की, गांव की, हमारे जन्मभूमि की जो धार्मिक अनुकूलता है वो इतनी हमारे लिए भाग्यशाली है, उसका गौरव नहीं समझते, तब तक बोलेंगे अरे इंडिया में क्या रखा है, भारत में क्या है, इधर क्या है, इतनी भीड़ है, इतनी गंदगी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु रामचंद्र, प्रभु श्री कृष्ण भगवान के भक्ति की जो अनुकूलता है इस भूमि के अंदर, तो शायद हम प्रशासन में या धन के प्राप्ति में या आर्थिक व्यवस्था में इतने उत्कृष्ट और इतने बेस्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारे देश के जैसी आध्यात्मिक उत्कृष्टता और विश्व में कहीं नहीं है। तो ये समझते हुए हम सबको हमारे इस मनुष्य जन्म को जो हमने पृथ्वी में भारत वर्ष में प्राप्त किया है उसकी महानता और गौरव को समझते हुए पूरा समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए। इसलिए विभीषण की वो सराहना कर रहे हैं कि इतने प्रतिकूल स्थिति में होते हुए भी आप अपने जीवन का खतरा मोलकर राम का नाम ले रहे हैं। और इतना दृढ़ विश्वास था कि एक बार रावण को पता चला कि मेरे ही देश में मेरा ही भाई मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तो वो क्रोध से आया झुपड़ी में विभीषण के, बोला विभीषण तुम्हारा इतना साहस कि हमारे होते हुए हमारे राज्य में तुम राम का नाम लेते हो, हमारे शत्रु है। तो भक्त जो है वो बहुत चतुर होता है, बहुत निष्ठा भी उसकी बहुत दृढ़ होती है। उसने कहा नहीं भैया मैं तो आपका ही नाम ले रहा हूँ, कैसे, तो राम का नाम लिखा है। और उसके पूरे झोपड़ी में पूरे दीवार पे खंबे पे छत पे सब जगह राम 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 ही लिखा था। ये कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, राम का नाम लिखा है सब जगह और मुझे कह रहे हो कि आपका नाम ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आपका नाम ले रहा हूँ, आपका ही नहीं भाभी का भी नाम ले रहा हूँ। कैसे, रावण मंदोदरी और शॉर्ट फॉर्म राम। ये ऐसे उत्तर जो है ना वो निष्ठा के बगैर नहीं आ सकते। इफ यू आर कन्विंस फ्रॉम विद इन देन यू कैन आंसर लाइक दिस। अगर आपके हृदय के अंदर गहराई में ये श्रद्धा और निष्ठा है तो ऐसे उत्तर आप दे सकते हो, हाँ तत्परता के साथ। तो ये सब हनुमान जी ने राम को बताया और कहा कि ये विभीषण जो है ना वो क्या कहते हैं, चापलूस नहीं है, कपटी नहीं है, उसका हृदय स्वच्छ है, वो वास्तविक भाव में आपकी शरण ग्रहण करने के लिए आया है। तो प्रभु ने कहा कि मैं हनुमान जी की बात को मानता हूँ और अब विभीषण को यहाँ ले लेता हूँ। तो विभीषण आकाश में प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको अभी भी ये पता नहीं था कि राम राम हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जब बुलावा आया आ जाओ तो आए, जमीन पर उतरे और अंदर प्रवेश किया, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा वातावरण था, उसमें बहुत सारे सर्कल थे सैन्य के रक्षा के, ऐसे बहुत सारे बड़े 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 वो पार करते करते बीच में राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं दो चार योद्धाओं के साथ, ऐसे उनका सुरक्षा कवच था। और पूरा जो मंडल था सुरक्षा कवच का वो हनुमान की पूंछ से घिरा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, कुंपण को क्या बोलते हैं, फेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वो जो किसी चीज़ को हम लोग घेर देते ना ऐसा पूरा कि बाहर का कोई प्राणी वगैरह मनुष्य ना आ जाए, इसलिए उसको कंपाउंड बनाते, कंपाउंड घेरा, वो घेरा जो था वो हनुमान जी के पूंछ का था, वो इतना अभेद्य था कि उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी वहाँ पर रात भर जगते बैठते थे, वैसे बैठे ध्यान लगाकर, उनकी पूंछ जो है इतनी विस्तार हो गई कि वो पूरे सैन्य मंडल को आवृत्त करके उसकी रक्षा कर रही, उसको भेदना किसी के पावर में नहीं था। तो वहाँ पहुँचे और सीधा शरणम प्रपद्ये, दंडवत प्रणाम किया प्रभु रामचंद्र को और दांतों में तृण लेकर कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो प्रभु ने क्या कहा, आइए लंकेश आपका स्वागत है। विभीषण ने कहा, अभी लंका के राजा बनने का तो आगे बहुत दूर की बात है, स्वागत ही किया आइए लंकेश के रूप में, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं रावण का वध करूंगा और आपको लंका का राजा बनाऊंगा। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया। एक जगह मैंने पढ़ा है कि उन्होंने उसी जगह पर रावण का विभीषण का राज्याभिषेक भी कर दिया लंकेश के रूप में, सब लोगों को आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा आपने ऐसे कैसे किया, उन्होंने कहा कि जो भी मेरे शरण में आता है और एक बार देखो क्या लिखा है, सकृदेव प्रपन्नाय तव अस्म इति च याचते, तव अस्म इति यानी मैं आपका हूं, ऐसा कहता है कि मैं आपका हूं, ये नहीं कहता कि आप मेरे हैं, वो तो बड़ा उद्दंडता हो गया ना कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, मैं अपने आप को अपने नियंत्रण में अपने आप आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूं। एक बार कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर अगर ये कहता है हृदय से भावपूर्वक सत्य वचन के रूप में कि मैं आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी एतद व्रतम मम, प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि उसकी मैं जीवन भर अनंत काल तक रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है, चाहे वो भूल जाए कि उसने कभी कहा था कि मैं आपका हूं और फिर मुझे वो भूल के और कुछ कृत्य करेगा, फिर भी उसके एक वाक्य को मैं नहीं भूलूंगा कभी। इसलिए आप सब लोग चित्रकूट में आए हो, प्रभु राम की शरण लेने के लिए आए हो, उनके चरण में प्रपन्नता प्राप्त करने के लिए आए हो, सब लोग हृदय से कहो हाँ तवास्मिति, मैं आपका हूं। हृदय से कहिए। प्रभु रामचंद्र जब एक बार ये बात सुनते हैं तो कभी भी अनंत काल तक, शाश्वत काल, चिरंतन काल तक नहीं भूलते हैं। फिर सबको मन में प्रश्न उठा कि हाँ ठीक है, आपने विभीषण को स्वीकार किया। प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि अगर रावण भी आता है और क्षमा मांगता है, सीता को वापस करता है और पश्चाताप करता है, तो रावण को भी अपना लूंगा। तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा, अगर रावण आता है तो आपने इसको तो पहले से राजा बना दिया लंका का, फिर रावण को मारने का प्रसंग नहीं होता है। रावण आएगा, शरण ग्रहण करेगा, तो आप उसको नहीं मारेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, क्या देंगे उसको? तो प्रभु कहते हैं कि मैं उसको अयोध्या का राज्य दूंगा। तो फिर भरत को क्या देंगे? भरत तो आपका भाई है, वो तो पहले से अभी अयोध्या को राज्य कर रहा है ना, और आप भी नहीं रहेंगे, रावण लंकेश बने, अयोध्या का पति बनेगा। तो कहते मैं तुम्हारे वैकुंठ का राज्य दूंगा। फिर सब भक्त पूछते हैं फिर आप कहाँ रहेंगे? लंका भी गई, अयोध्या भी गया, वैकुंठ भी गया, तो आप कहाँ रहेंगे? बोले मैं भक्तों के हृदय में रहूंगा, वो मेरा अनभिषिक्त राज्य है, वहां मुझे अभिषेक करके राजा बनने की जरूरत नहीं है। मेरे भक्त का हृदय कमल जो है सदैव मेरा निवास स्थान है, मैं वहीं रहूंगा। ये हमारे प्रभु हैं। किसका भजन कर रहे हैं हम, किसको पुकार रहे हैं, किसका भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसे प्रभु का भजन कर रहे हैं हम कि हम भूल जाएं वो नहीं भूलेंगे। हमने शरण ली तो उत्तरदायित्व लेते हैं अपने ऊपर कि मैं, इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है, मैं इसको भूल नहीं सकता। हरे कृष्णा। तो कल की कथा में वो कुछ कुछ बातें रह गई थी, तो आज आपको बता दें। तो पहली कथा ये थी कि जब प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में गए ना, तो अत्रि मुनि के आश्रम से उनको थोड़ी देर तक अत्रि मुनि भी आए छोड़ने के लिए। ये हमारी संस्कृति का एक और एक पहलू है कि जब कोई हमारे घर में अतिथि आता है ना, तो उसको जब जाने का समय आता है तब उनको उनके वाहन तक कम से कम छोड़ने जाते हैं। ये तो कभी कभी ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं, कभी कभी बस स्टैंड पर छोड़ने जाते हैं, कभी कभी थोड़ी अंतर तक चल तक छोड़ने जाते हैं। ये हमारा रिवाज है। अत्रि मुनि इतने वंदनीय आचार्य हैं जिनका प्रभु रामचंद्र ने भी पूजन किया था, लेकिन वो भी ये सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे घर पर आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, बालक बनकर आए हैं, फिर भी मेरे घर पर आए हैं, तो उनको सत्कार करते हुए उनको छोड़ने नदी किनारे तक आते हैं। फिर वे शिष्यों से कहते हैं कि इनको पार करा दो, तो वो नदी पार करा देते हैं, फिर शिष्य भी चले जाते हैं। फिर वे भयंकर जंगल में प्रवेश करते हैं। अभी देखिए, तो वो कहते हैं कि हे बटू, यानी शिष्यों को कहते हैं अत्रि मुनि के, कि आप मुझे हमको नदी पार कराइए। तो कहते हैं यहाँ पर बहुत मजबूत नौका है, वो आपको पार करा देती है। कुछ ही क्षणों में उन्होंने नदी पार करा दिया। उसके पश्चात मुनि कुमार अपने अपने आश्रम में चले गए। फिर राम लक्ष्मण सीता भयंकर जंगल में प्रवेश किया। वहाँ पर कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, रात कीड़ा को क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो इंग्लिश में कहते हैं भैया, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। वो जो आवाज़ कहता ना किर रात को, हाँ मैया बताएगी तो अच्छा रहेगा। झिंगुर, झिंगुर, अच्छा। जुगनू मुझे काजव, जुगनू वो चमकता है, प्रकाश वाला होता है। मैं आवाज करने वाला होता है जंगल में, टक 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 टक, किर 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 किर, हाँ रात कीड़े, लेकिन वो मराठी में हो गया ना, हिंदी में पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं। उसके आवाज से पूरा जंगल जो भरा हुआ था, डरावनी ध्वनि आ रही थी, उसमें सारे सिंह वाघ इनके भयंकर आवाज से सब वन गूंज रहा था, और बहुत भयंकर राक्षसों से वो जंगल भरा हुआ था। तो राम लक्ष्मण को कहते हैं ऐसा करो, अभी हम लोग जैसे हमने सुना था वैसे भयंकर जंगल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, धनुष की प्रत्यंचा बाण लगाकर खींचते हुए मैं आगे चलूंगा और तुम पीछे धनुष को तानते हुए चलना, और जैसे जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जीव रहता है वैसे हम दोनों के बीच में सीता देवी रहेगी। बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसलिए आप सावध रहकर सब जगह देखना, यहाँ पर लगता है राक्षसों का बड़ा भय है। इस प्रकार के बोलते बोलते वो 6 कोस आगे चलते गए। वहाँ पर सुंदर फूलों से भरे हुए बहुत तालाब थे, कमल और शीतल पानी से भरा हुआ सुंदर जलाशय थे बहुत सारे। उन्हें जलपान किया, उतने में जल पान करके एक वृक्ष के नीचे छाया के लिए बैठ गए तो देखा कि सामने से एक बहुत भयंकर राक्षस आ रहा था। उसके मुख में बड़ी बड़ी नोकदार दांत थे, उसके मुंह में अपनी गर्जना से सबको भयान वातावरण निर्माण कर रहा था वो, और उसके बाएं कंधे पर जो भाला लगाया था उसने, वो भाले के ऊपर अनेक मनुष्य लटक रहे थे मरे हुए, और अनेक हाथी भी थे, शेर भी थे, एक नोक पर लटक के कंधे पे लेकर एक एक करके खाते खाते वो आ रहा था। तो उसको देखकर धनुष धारण किए हुए रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण को कहा, अरे बंधो देखो ये प्रचंड शरीर वाला राक्षस जो है वो आ रहा है, और अभी हमें डराने का प्रयास कर रहा है, हमारी ओर मुंह करके आ रहा है। तो लक्ष्मण ने उन्हें कहा, लक्ष्मण धनुष को सज्ज करते हुए तैयारी में खड़े रहो, और हे सीते आप बिल्कुल डरो मत, हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। और प्रभु रामचंद्र एक पर्वत के समान निश्चल होकर वहाँ खड़े हो गए। तब श्री राम लक्ष्मण जानकी इनको देखकर वो राक्षस बहुत जोर जोर से हंसा, अरे बच्चों अरे बालकों देखो कैसे बोल रहे हैं, बाहर से क्या दिख रहा है प्रभु राम को देखकर, ये देखो अभी आप सबको पता है कि ये क्या पीछे इतिहास क्या है, लेकिन बाहर क्या लग रहा है कि एक अलंकार पहने हुई और साधु का भेष पहनी हुई स्त्री उसके साथ में। अभी अलंकार पहनना और गेहुआ वस्त्र या वलकल पहनना ये जाता नहीं ना साथ में, इस कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कहते हैं कि तुमने मुनि का वेश धारण किया है लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बाण और धनुष और तोड़ी रहे, ये एक आश्चर्य की बात है, और जटा भी पहनी हुई है, वलकल भी धारण किया है, फिर भी शस्त्र लेके घूम रहे हो, और तुम्हारे बीच में स्त्री भी है, तुमने मुनि वेश धारण किया लेकिन स्त्री को लेकर जा रहे हो, और स्त्री भी कैसी वलकल धारण के अलंकार पहने हुए, आप लोग कौन हो? मेरे लिए तो तुम एक बहुत सुंदर ग्रास हो, यानी खाने के लिए एक भोजन के लिए बहुत अच्छी वस्तु हो। ये हिंस प्राणियों से भरे हुए जंगल में आप लोग क्यों आए हो? राक्षस का वचन सुनते हुए हंसते हंसते राम ने कहा, मैं राम हूँ, दशरथ पुत्र राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और ये मेरी प्राण प्रिय सखी पत्नी सीता देवी है। पति का पिता का आदेश मानकर हम लोग यहाँ पर वनवास कर रहे हैं। तो फिर से जोर से उसने हा 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 और मुंह खोलकर अपना शूल हाथ में लेकर वो कहता, ए राम तुम क्या मेरी ख्याति को जानते नहीं हो? अरे मेरे भय से यहाँ पर सारे मुनि लोग भाग गए हैं क्योंकि मैं उनको खाता हूँ। अगर तुम्हें जिंदा रहने की इच्छा है तो सीता को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, अभी भी आपको समय देता हूँ, अभी के अभी इस सुंदर स्त्री को मैं मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम्हें जाने की इजाज़त देता हूँ, और अगर तुम्हें इतना ही अगर जोश है तो मरने के लिए तैयार हो जाऊँ, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा, फिर अनंत काल तक इस सुंदर स्त्री के साथ मैं वन में विहार करूँगा। ऐसे कहते हुए उसने भाग कर आकर सीता को पकड़ा। कहते हैं उसका आकार जो है ना वो आसमान तक पहुँचा हुआ आकार था उसका, तो जैसे मैं ऐसा ही घड़ी उठाऊँगा ना तो घड़ी कितनी छोटी है मेरे आकार के सामने, ऐसी सीता देवी छोटी सीता को उसने हाथ में पकड़ा और जाने लगा। वो सीता उसके हाथ में आक्रोश कर रही है, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो प्रभु ने बाण निकालकर सब बाणों का वर्षाव किया उनके ऊपर, थोड़ा सा त्रस्त हो गया वो, कुछ कष्ट नहीं हुआ उसको, सीता को छोड़ दिया, पहले इनका इलाज करना चाहिए। दोनों हाथ से दोनों को उठाया और आगे चलने लगा। तो सीता देवी चिल्लाने लगी, हे प्रभु हे लक्ष्मण मुझे अकेले छोड़कर वन में आप जा रहे हो और मेरी रक्षा कीजिए। तो प्रभु ने कहा बहुत हो गया, इन्होंने धनुष बाण से एक तलवार निकाली पहले जो उनको अगस्त्य मुनि ने दी थी, और दोनों ने उसके दोनों हाथ काट दिए, और दोनों हाथ काटते ही वो जमीन पर गिर गए। फिर प्रभु ने अनेक अनंत बाणों का वर्षाव करके उस राक्षस का वध कर दिया। अभी उसको उसका सर काटा और उसका हाथ काटे, उसके पैर भी काटे, फिर भी वो सर्प की तरह ऐसे उनके तरफ आ रहा है और मर ही नहीं रहा है। तो लक्ष्मण ने आश्चर्य व्यक्त किया, अरे ऐसे कैसे हो रहे, इतने सारे बाण मारे और सब कुछ शरीर के हिस्से तोड़ दिए फिर भी ये जीवित क्यों है? तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि राक्षसों का वध जो है ना वो एक विशिष्ट प्रकार से होता है, जब उनको जमीन पर गाड़ देते हैं तब वो मर जाते हैं, तो उनको बड़ा गड्ढा खोदते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं, जमीन में गाड़ने के बाद उसकी मृत्यु होती है, और उसकी मृत्यु के बाद में उसके मृत देह से बहुत सुंदर आकार होने वाला स्वच्छ वस्त्र परिधान किया हुआ, तप्त स्वर्ण के तरह सुंदर अलंकारों से सुशोभित होने वाला और आकाश के सूर्य के समान तेजस्वी ऐसा एक पुरुष प्रकट हो गया उसके मृत शरीर से। उसने प्रभु को प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु रामचंद्र, आप साक्षात कृपा मूर्ति हैं। प्रणाम करने वाले जीवों का दुख आप हरण करते हैं और उनके जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको नष्ट कर देते हैं। मैं आपको बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। ऐसे करके उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। तो प्रभु ने कहा कि आप कौन हो? तो प्रभु उसने कहा कि मैं विराद हूं। मैं कमल पत्र जैसे नयन जिसके थे ऐसा विमल तेज होने वाला विद्याधर था और उसमें मेरा नाम विराद तुम्बुरु था। और मैं जब ऋषि मुनि दुर्वासा मुनि आए तब मैं वहाँ पर अप्सरा के साथ आनंद ले रहा था और दुर्वासा का मैंने यथोचित सत्कार नहीं किया। ये स्वर्ग में यही प्रॉब्लम होता है। हम सब लोग यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर अग्नि कर्म करे पुण्य कर्म करे तो स्वर्ग में, क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी, यानी स्वर्ग में जाने का बहुत आनंद है, बहुत अच्छे प्रकार का आनंद है, कोई कष्ट नहीं है, रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जन्म मृत्यु है लेकिन बहुत लंबी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर रहे, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि भोग इतना तीव्र होता है कि भोग को भोगते हुए पता नहीं चलता है कि हम कौन है क्या है। समझो अभी यहाँ पर अभी क्या फ़र्क है यहाँ पर और स्वर्ग में, उस शरीर में इस शरीर में। समझो इस शरीर में अभी मुझे 10 जलेबी खाने की शक्ति है, समझो तो वो जलेबी वही रहेगी लेकिन मैं वहाँ पर उसी उन्हीं इंद्रियों से 100 जलेबी खा सकता हूँ, कुछ कष्ट नहीं होगा मुझे। और यहाँ की जलेबी तो एक प्रकार की होती है, वहाँ की जलेबी इतनी स्वादिष्ट होती है कि उसका स्वाद जो है वो आप वर्णन नहीं कर सकते। तो एक तो हमारी क्षमता ज़्यादा है और वहाँ के व्यंजनों का स्वाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इतने तीव्र भोग के वातावरण में भोग लेने के लिए व्यक्ति जीव इतना प्रवृत्त रहता है कि वो फिर सब कुछ भूल जाता है। आप सोच सकते हैं दुर्वासा मुनि अभी वैकुंठ में जाकर विष्णु की महाप्रसादी माला लेकर आ रहे हैं इंद्र को देने के लिए प्रेम के कारण, यानी दया प्रेम वात्सल्य के कारण, और दुर्वासा मुनि महाप्रसाद लेके खड़े हैं विष्णु की माला लेकर खड़े हैं और ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जो है अप्सराओं का डांस देख रहे हैं। चलो ठीक है आप बिजी हो लेकिन जब देखते हो कि कोई आया है महान व्यक्ति तो आपको वो सब बंद करके भागना चाहिए और दंडवत करना चाहिए, लेकिन वो नृत्य जो होता है वहाँ का वो इतना आकर्षक होता है, इतना खोने वाला होता है कि वो इतना खो गए थे उसके अंदर। तो दुर्वासा ने उनको महाप्रसादी माला दिया तो उन्होंने एकदम ऐसा बिल्कुल दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, लिया और हाथी के हाथ में दिया। वो कैसे होते हैं मंत्री संतरी, बड़ी बड़ी माला पहनते तुरंत यहाँ दे देते हैं, तो पीछे कोई सिक्योरिटी उसको लेके कहीं और पास कर देता है उसको। ऐसे उन्होंने वो ऐरावत को दे दिया, ऐरावत तो हाथी है, उसने तो माला लिया और पैलों में कुचल दिया। विष्णु की महाप्रसादी माला प्राप्त हो रही है और आपने कुछ एप्लीकेशन नहीं दिया था, दुर्वासा मुनि दया से लेके आ रहे हैं आपके लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पास आकर आपको डिलीवरी दे रहे हैं, हैंड डिलीवरी, और फिर भी आप उसको बिल्कुल महत्व न देते हुए हाथी के पैरों में दे रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि ने सोचा कि ऐसे अगर इंद्र की स्थिति है तो बाकी लोगों की क्या अवस्था होगी, इसको दंड देना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग भी ऐसा सोचेंगे ये भी सच्चा है, अच्छा काम है, ये ऐसा ही करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। तो इंद्र को श्राप दिया कि तो सारा धन ऐश्वर्य भोग नष्ट हो जाएगा। तो उसके कारण सारे देवताओं धन भ्रष्ट हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया, राज्य भी नष्ट हो गया, छुप कर राक्षसों ने हमला किया और गुफा में छुप गए सब देवता। ये स्थिति है। तो मेरी भी ये स्थिति थी, मैं अप्सराओं का नृत्य देखने में इतना मग्न हो रहा था कि मैं दुर्वासा मुनि को ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने शाप दिया, ऐसा भयंकर राक्षस बनोगे कि तुम्हें देखना भी लोगों को मुश्किल होगा, इसलिए मैं विराद बना, विराद राक्षस। फिर मुझे मेरे गलती का अनुभूति हुई कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं ना कि अरे ऐसे मत करो तो समझ में नहीं आता है, एक चाटा लगाया तो बिल्कुल होश में आता है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे उद्दंड लोगों को ना से भयंकर शाप मिलने पर पूरा अहंकार पूरा नीचे जाता है, पूरा मग्नता समाप्त हो जाती है, फिर चरणों में गिर गए, महाराज जी माफी कीजिए, क्षमा कीजिए, मेरे हाथ से गलती हो गई, कुछ अभी पुशाप दीजिए, कुछ कंसेशन डिस्काउंट दीजिए। तुमने कहा कि तुम भयंकर राक्षस बन के चित्रकूट के वन में रहोगे, वहाँ पर हाथी घोड़े और सिंह वाघ और मनुष्यों को मुनियों को खाओगे, बहुत भयंकर जघन्य कृत्य करोगे, पाप कृत्य। लेकिन उसी वन में वनवास युनि वेश धारण करके प्रभु आएंगे। जब उनके हाथ से आपका वध होगा तो दोबारा आपको पुनः शरीर प्राप्त होगा। अब ये सारा जो लीला है वो केवल नया शरीर प्राप्त करने के लिए नहीं है, या तो पुराना शरीर जो खोया हुआ है जो वापस लाने के लिए नहीं है, इसके बीच में हृदय परिवर्तन होता है। जितने भी राक्षसों का भगवान ने वध किया है वो सभी किसी ऋषि मुनि के शाप प्राप्त थे, तो उनके द्वारा शाप जो है वो वरदान ही होता है। लगता शाप है, हाँ वो उत्कल उत्कल राजकुमार को उन्होंने बगुला बना दिया, बहुत अहंकार था उसको, लेकिन बगुला बनाने के बाद में क्या वरदान दिया कि प्रभु राम प्रभु कृष्ण आएंगे और आपको तारेंगे। तो अगर वो बगुला ही बना रहता तो वो अपने कर्मों से आगे चलता, लेकिन उसने शाप प्राप्त किया इसलिए उसको कृष्ण प्राप्ति हुई। नल कुबेर मणिग्रीव शराब में नष्ट नशा करते हुए नग्न होकर मंदाकिनी में विहार कर रहे थे, नारद मुनि का अनादर किया, मतलब आदर नहीं किया, तो प्रकार से अनादर ही हो गया ना, वो आ रहे फिर भी नोटिस नहीं किया। तो उनकी ये बड़े बाप यानी कुबेर, कुबेर के बालक है ना वो, बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे हैं, अगर ऐसे रहेंगे तो क्या होगा, उनका गति क्या होगी। शाप दिया पेड़ बनोगे तुम, लेकिन पेड़ बनोगे तो अहंकार उतर गया, तुरंत पेड़ बन गए उस समय। तो बोले आप पेड़ बनोगे गोकुल में, अभी सत्ययुग की बात चल रही है, लेकिन कई युगों के बाद वहाँ पर कृष्ण भगवान अवतार लेंगे और फिर आप उनके बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे, फिर उनके द्वारा आपका उद्धार होगा और फिर आप देव शरीर प्राप्त करोगे। लेकिन देव शरीर प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन उनके तथा प्रेम भक्तिम स कामे प्रयच्छ, प्रेम भक्ति का भी हृदय में उदय हुआ था उनके। तो केवल शाप शालन और पुनः शरीर प्राप्ति ये ही उद्देश्य नहीं है उसका, उसके बीच में हृदय परिवर्तन होकर प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो आपके चरणों को देखकर मैं यहाँ पर बहुत पवित्र हो गया हूँ, आपने मुझे दुर्वासा के शाप से मुक्त कर दिया है, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि संसार के नाश को कारण बनने वाले आपके पदकमलों का आश्रय मुझे दो, सदैव आपके पदकमलों का स्मरण मुझे होने दो और मेरी वाणी सतत आपके नामों का संकीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरे कान सदैव आपके कथामृत को प्राशन करते रहो, मेरे दोनों हाथ सदैव आपके चरण कमलों की पूजा करते रहो, मेरा मस्तक सदैव आपके पद युगल यानी आपके दो चरण कमलों के लिए शरणागत रहे। आप भगवान हैं, विशुद्ध ज्ञान ये आपका स्वरूप है और आपके ही आत्मा के अंदर यानी अपने अंदर ही आप संतुष्ट रहते हो, आत्मा राम हो आप और भक्तों को आप रमण करने वाले हो। आप सीता रूपी सीता देवी के साथ हो, सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मदेव भी आप ही हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे राम मैं आपको शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ मैं आपकी कृपा से अभी वैकुंठ जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी माया मुझे आच्छादित न करे। ऐसे कहते हुए प्रार्थना करते हुए महाबुद्धिमान प्रभु रामचंद्र रघुनंदन प्रसन्न हो गए, उन्होंने विराट को वर दिया। गच्छ विदाधरा शेष माया दोष गुणाजिता त्वया मद्दर्शनो उत्सद्यो मुक्तो ज्ञानवतांबरम। हे विद्याधर अब तुम जाओ, माया के सब गुण और दोष के ऊपर आपने विजय प्राप्त किया है, ज्ञानी लोकों में आप श्रेष्ठ बन गए हो, और मेरा दर्शन के कारण आप तत्क्षण मुक्त हो गए हो। इस लोक में मेरी भक्ति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वो जब निर्माण होती है तो तत्क्षण मुक्ति देती है। आप मेरे भक्ति से संपन्न हो गए हो और मेरी आज्ञा से आप परम धाम प्राप्त कर रहे हो, आप आनंद से मेरे धाम में चले जाओ। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने उस भयंकर राक्षस का वध किया, उसको मुक्ति का वरदान दिया, भक्ति का भेंट दी और पुनः विद्याधर का रूप देकर भक्ति पूर्ण करते हुए अपने धाम में उसको प्रभु ने भेज दिया। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद में एक और कथा बीच में रह गई थी, जब प्रभु सॉरी भरत और शत्रुघ्न लौट के आए ना, युधाजीत नाम के उनके मामा के गांव से कई कई देश से लौट के आए, तो उन्हें भयंकर दृश्य देखा। फिर उन्होंने माता से मुलाकात की, माता की निर्भत्सना की, कौशल्या की क्षमा मांगी। कौशल्या ने भी कहा, अभी तुम खुश हो ना, मेरे बालक को वन में भेजकर राजा बनने का सपना आपका पूरा हुआ ना, अभी तो खुश हो ना आप। तो उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हुए रोए हो, कहा कि मैंने ऐसे नहीं सोचा था, ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरी माता का जो षड्यंत्र था उसमें मेरा कोई भी सहभाग नहीं है, आप मेरी बात पर विश्वास करो, प्रभु राम मेरे लिए वंदनीय है, मैं इसी वक्त वन में जाकर उनको लेके आना चाहता हूँ। तो फिर कौशल्या ने गले लगाया और कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रेम को उसी प्रभु राम के प्रति, मेरे पुत्र प्रेम के प्रति, रामचंद्र के प्रति, लेकिन दुख के कारण मैं क्या कह रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्षमा करो। फिर सुमित्रा को मिले और फिर शत्रुघ्न और भरत जो है वो बाहर आए। जब बाहर आए तो दुर्भाग्यवश, मंथरा का दुर्भाग्यवश, वो रेशमी वस्त्र पहने हुए, बहुत सारे अलंकार पहने हुए, जगमगाती हुई जा रही है वहां से। तो भरत और शत्रुघ्न रो ही रहे थे क्योंकि इतना भयंकर प्रसंग का उनको यहाँ पर अवगत हो गए, वो ज्ञान हो गया उनको कि अरे हमारे अपरोक्ष यहाँ पर क्या क्या हो गया, वो भी हमारे नाम से हुआ, हमें राजा बनाने के लिए हमारी माता ने ये सब कुछ किया, हम ही उसके एक प्रकार से सूत्रधार नजर आते हैं, कितनी भयंकर स्थिति है। वो दुखी होकर रोते रोते आ रहे थे तो उनको देखकर प्रजा भी रो रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भरत के विषय में पूर्ण अयोध्या में ऐसी गलतफहमी फैल गई थी कि यही है, इसने ही मामा के घर में बैठकर पूरा सूत्र संचालन किया है। और रामायण के अंत में भी लिखा है संतों ने कि पूरी रामायण हो गई, 14 वर्ष तो जमीन के नीचे 10 फुट अंदर रहे, वलकल पहने, मूत्र गौमूत्र के अंदर बार्ली जौ का ग्रहण किया, कंदमूल खाए और राम से भी अधिक कठोर वनवास किया भरत ने। फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, फिर 11 लाख वर्ष राज्य भी किया और सब कुछ अच्छा हो गया, सब अंतर्धान होने का समय आया, फिर भी कहते हैं अयोध्या के कुछ लोगों के मन में अभी भी संशय था कि यह सब कुछ के कारण पीछे भरत ही था। कुछ लोग ऐसे थे कि जब भरत नदी में स्नान करने जाते थे तो दूर से छुपकर उनको पत्थर मार देते, उनके मन में वो क्रोध था कि भाई इसके वजह से सब कुछ हुआ है। तो देखिए कैसा भरत का किरदार है, इतनी सारी जन निर्भत्सना सहन करते हुए उसकी राम भक्ति कभी विचलित नहीं हुई, कभी सोचा नहीं अरे बहुत हो गया अभी राम भक्ति, इतना सब करके भी लोग पत्थर मार रहे हैं, क्या करना है मुझे। भगवान के भक्तों की भक्ति जो है वो बाह्य वातावरण नकारात्मक हो या सकारात्मक हो उस पर निर्भर रहती नहीं है, वो उस पर तो होती है और हृदय से होती है। वो किसी भी स्थिति में परिस्थिति की प्रतिकूलता से प्रभावित नहीं होते हैं, चाहे स्तुति होती हो या निर्भत्सना होती हो या निंदा होती हो या धिक्कार होता हो, फिर भी भगवान की भक्ति में कभी उनका अंतर नहीं आता है। इनफैक्ट भगवान की भक्ति उनकी वृद्धिंगत होती है, जितना विरोध होता है उतना वो भक्ति बढ़ती है उनकी। जैसे सोना जो है ना, उसको कितना आप अग्नि में डालोगे ना उतना उसका प्रकाश बढ़ जाता है, वो तेज बढ़ जाता है, शुद्धि बढ़ जाती है, चमकने लगता है सोना। तो जितना आप सोने को अग्नि से डालोगे अग्नि परीक्षा में उतना वो अपना सोने स्वर्णपन जो है वो उसका बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से प्रतिकूल स्थिति भक्त को ना निरुत्साहित करती है लेकिन उसकी भक्ति में प्रचंड वृद्धि होती है। इस प्रकार से भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं और वहां से मंथरा आती है तो सैनिक भी व्याकुल है। कुछ लोगों को समझ गया है कि भरत का ये नहीं था, सैनिक लोग दुखी थे कि इनके नाम से माता ने ये सब षड्यंत्र किया, हमारे प्रिय राम को जंगल में भेज दिया, तो सबको पता चला कि इसका सबका मूल जो है वो मंथरा है। मंत्रा वहां सज धज के रोड पे जा रही है तो सैनिकों ने उसको पकड़ा और क्रोध से उसको भरत के सामने लाके खड़ा किया, बोले हे भरत, हे लक्ष्मण, हे शत्रुघ्न, यही है वो, इसके वजह से सब कुछ हुआ है। उनको भी सब समझ में आया था, तो कथा सुनी थी, लेकिन वो व्यक्ति सामने आई तो शत्रुघ्न जैसा ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति भी इतना क्रोधित हो गया, उसने ना उसको उठाया और जमीन में पटक दिया اور لاتوں سے مکوں سے مکوں سے اتنا مارا اس کو, اتنا مارا, بار بار اٹھا کر پھینک دیا. کہتے ہیں کہ اس کے سارے النکار یہاں وہاں بکھر گئے, ٹوٹ کے بکھر گئے, اس کے وستر بھی ادھر ادھر ہو گئے, اس کے بال بکھر گئے, اس کے ہڈیاں ٹوٹ گئی, خون پسلیک ہو گیا, سب خون خون لت پت ہو گئی. وہ اتنا کروھ تھا کہ اس کے کان بھرنے کی وجہ سے کئی کئی ماتا نے یہ سب کام کیا, اور آج اتنا بھینکر درگھٹنا ایودھیا میں آ گئی ہے اس کی وجہ سے. پھر بھرت نے بولا, شتروگھن رکو, آپ کو یہ شوبھا نہیں دیتا, آپ رگوکل کے چھتری ہو اور یہ استری ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ نرک جانے کی یوگیہ ہے, اس کا ود کرنے کی یوگیہ ہے, لیکن ہم اس کا ود نہیں کریں گے کیونکہ ہم چھتری ہیں. اگر میں چھتری نہ ہوتا تو میں میری ماتا کا تتکال ود کر دیتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماتا کل گھاتی نہیں ہے, میں اس کا پتر کہنے لائق میں اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہوں, لیکن ہمیں اپنی مریادا پالن کرنا آوشک ہے. انہوں نے اپنی مریادا توڑ دی, اس کا ارتھ یہ ہوتا نہیں کہ ہم بھی اپنی مریادا چھوڑ دیں. ہاں, کسی نے برا کیا تو میں بھی برا کروں گا. ہماری پرتیوگتا اچھے سے ہونی چاہیے, برے سے نہیں ہونی چاہیے. برے کسی نے فار ایگزامپل, ارے پربھو جی آپ کہہ رہے ہو کہ لائن میں جاؤ, وہ جگہ نا وہ بھی لائن توڑ رہے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں, ارے جو برا ادھارن ہے اس کو کیوں فالو کرتے ہو, جو لوگ اچھی طرح کھڑے ہیں ان کا ادھارن کیوں نہیں فالو کرتے ہو, ان کا انکرن کیوں نہیں کرتے ہو. تو پروتی ہوتی ہے کہ کوئی برا کر رہا ہے تو ہم بھی, ہمارا برا برائی جو ہے جسٹیفائڈ ہے, ہم اس کو کہتے ہیں دیکھو ہم بھی کر رہے ہیں, کوئی غلط نہیں کر رہے, وہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں, اچھائی کو فالو کرنا چاہیے. اچھے ادھارن کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ہی انکرن کرنا چاہیے. تو بھرت جی کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا, اس لیے آپ چھوڑ دو. چھوڑ دیا ان کو. شتروگھن جیسا مہان بھکت جو ہے اسے بھی اسہی ایسی گھٹنا تھی وہ, کہ پربھو رام کو ہمارے لیے ونواس پراپت ہوا, تو یہ بتانا بھول گیا تھا میں. اتنے میں وہاں سے کئی کئی بھاگ کے آئی, ارے میری سیوکا کو مت مارو, میری سیوکا کو مت مارو, میری سیوکا ہے, میری سیوکا ہے. پھر وہاں سے نکل گئے. یہ ایک چھوٹی سی کتھا کل رہ گئی تھی بتانے کی. اس کے آگے جب پربھو دنڈکارن میں گئے تو بیچ میں ان کے سربھنگ رشی کا ان کا سماپن سمبندھ ہوا, ملاقات ہوئی. ستیشن رشی بھی ملے ان کو. پہلے ملے بھردواج منی وارانسی میں, وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ ون میں آئے ہو, ہم بھی ون میں ہی ہیں, آپ یہیں رہو 14 ورش کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایودھیا سے بہت پاس میں ہیں, اور لوگوں کو پتا چلے گا میں یہاں ہوں, سارے ایودھیا واسی یہاں ملنے آئیں گے ہم کو, پھر ہمارا جو ایکانت ونواس ہے وہ بھی نہیں ہوگا, آپ کا جو ون کی شانتی ہے, بھجن کی شانتی, وہ بھی نشٹ ہو جائے گی, اور راجیہ کے لوگوں کو ملتا رہوں گا تو پھر ونواس کیسا. اس لیے مہاراج جی ہمیں آگیا دیجیے. پھر وہاں سے وہ سربھنگ رشی کے آشرم میں گئے, وہاں سے ستیکشن کے آشرم میں گئے, وہاں سے والمیکی کے آشرم میں گئے, اور سب کا سنگ کرتے کرتے وہ آگے بڑھے. اس کے آگے کچھ رشی ملے ان کو ایکانت ون میں بھجن کرنے والے. پربھو رام چندر جو ہے ویسے تو برگد کے پیڑ کا رس نکال کے انہوں نے جٹا دھارن کی تھی, ہے نا, پھر بھی رام تو رام ہی ہے نا, ان کا سوندر تو جٹاؤں میں چھپنے والا نہیں ہے, ولکلوں میں چھپنے والا نہیں ہے. پربھو کا سوندر جو ہے وہ النکاروں سے سوشوبھت نہیں ہوتا ہے, آپ دھیان رکھیے اس بات کو. شرنگار سندر کرنے سے پربھو سندر نہیں ہوتے ہیں, سندر شرنگار سندر ہو جاتا ہے پربھو کے اوپر آنے سے, اور ان شرنگار کے بیچ میں کوئی انگ آپ کا پربھو کا دکھائی پڑے گا آپ کو, اور اس میں آپ کا درشٹی ٹک جائے گی تو آپ کا کلیان ہوگا. پربھو کے شریر کے اوپر کا النکار دیکھ کے آپ کا کلیان نہیں ہوگا, پربھو کو دیکھ کے آپ کا کلیان ہوگا. اور سارے جو النکار ہیں ان کا سوندریہ پربھو کے کارن بڑھتا ہے, اور وہ النکار نہیں بھی ہوگے تو بھی کہ پربھو کا سوندریہ آبھادت رہتا ہے, پھر کوئی انتر نہیں ہوتا ہے. تو پربھو ابھی ولکل میں ہیں, جٹا دھارن کیے ہوئے ہیں, تو ان کا روپ جو ہے وہ اتنا موہک تھا کہ وہ رشی مادھوریہ تتو میں پراکاشٹھا کے ستھان پر پہنچ گئے تھے. ان کا بھجن جو ہے شریر پروش کا ہے لیکن مادھوریہ بھاؤ میں وہ پرموچ اوستھا میں پہنچ گئے تھے, اس کی پرینتی کے روپ میں ان کو رام کا درشن ہوا, اور وہ تتکال پربھو رام کے پاس میں آئے. انہوں نے کہا कि हमें आपकी पत्नी बनना है, मैं आपकी सखी बनना है माधुर्य भाव में। तो प्रभु ने कहा ये मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में हूँ और एक पत्नी व्रत में हूँ और मैं इस अवतार में एक ही पत्नी ग्रहण कर चुका हूँ, आगे ग्रहण कर नहीं सकता हूँ। लेकिन जब मैं अगले अवतार में आऊँगा, कृष्ण अवतार में आऊँगा, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा, तो आप ब्रज में गोपियाँ बनेंगी और आपके साथ मैं रास विहार करूँगा और आपके सख्य आपके सखी भाव को संतृप्त करूँगा। तो वो गोपियों को कहा गया है ऋषि चारी गोपियाँ। वो सारे ऋषि जो है वो ब्रज में, उन्होंने ब्रजवासियों के घर में जन्म लिया और प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, उनको पुराने स्नेह और मोह की प्रेम की याद आई और उन्होंने अलग रूप से श्री कृष्ण के साथ में रासलीला रचाई है। ऐसे श्री कृष्ण के चरित्र में आप देखेंगे अनेकों प्रकार की गोपियाँ हैं। जब जब मैंने कहा ना, जब भी प्रभु मिथिला गए थे विश्वामित्र मुनि के साथ में, वहाँ पर कई युवतियाँ उन पर आकर्षित हो गई थी। उनको कहते हैं मिथिला वासिनी गोपियाँ। ये मिथिला वासिनी गोपियाँ हैं, इन्होंने कात्यायनी व्रत किया था और कात्यायनी व्रत करने के बाद भगवान कृष्ण का दर्शन रासलीला और स्वीकार प्राप्त किया था। फिर वो कौशल देश में गए थे अपने मैया के घर, तो कौशल वासिनी युवतियाँ उन पर आकर्षित हो गई थी, मोहित हो गई थी, तो उनको भी भगवान ने ब्रज में स्थान दिया है, कौशल वासिनी गोपियाँ। फिर अयोध्या में बहुत सुंदर युवतियाँ थी, वो भी भगवान राम तो वहीं रहते थे, कई साल तक रहे वनवास जाने के पहले, तो वो भी अयोध्या वासिनी गोपियों का अलग एक वृत्तांत है, उपाख्यान है। फिर जब ही मत्स्य अवतार धारण किया था तो समुद्र कन्याएं इन पर मोहित हो गई थी, वो भी गोपियाँ बनी। फिर कुर्मा अवतार में, फिर नरसिम्हा अवतार में, ये सभी अवतारों में भगवान भयंकर दिख रहे हैं लेकिन उनकी आकर्षण होने वाले बहुत लोग होते हैं उस अवस्था में भी। तो हर स्थिति में जैसे अनंत शेष के रूप में जो उनको नाग कन्याएं हैं वो भी उनको मोहित हो गई थी, सब नाग कन्याओं ने तप किया था और उन नाग कन्याओं को प्रभु ने फिर कहा कि आप बलराम की गोपियाँ बनेंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अभी आपको संक्षेप में अगली कहानियाँ बताते हैं। श्री कृष्ण लीला के अंदर प्रभु रामचंद्र की लीला का अंतर्भाव कैसे है? तो काम्यवन नाम का सुंदर स्थान है जहाँ पर प्रभु एक बार ग्वाल बालों के साथ में आए, गोपियाँ भी आई, वहाँ पर बाल लीला भी होती है, ग्वाल बाल की लीला भी होती है, श्रृंगार भी होता है, सब कुछ होता है। तो एक कहानी मैंने आपको पहले बता दी उसके बारे में ना, कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमने सुना है कि तुम पिछले अवतार में प्रभु राम थे, हमको दर्शन दिलाओ। तो फिर हाँ ना 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 करते हुए उन्होंने उनको चेतावनी दी, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो बात करना बंद कर देंगे। जब गोपी या ग्वाल बाल श्री कृष्ण को धमकी देते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो उससे बड़ी धमकी उनको भयभीत करने वाली और कोई नहीं होती। अरे वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़ के इनके साथ खेलने के लिए तो आए वो, और वो खेल में लेंगे नहीं, सबसे बड़ी धमकी है उनके लिए। तो तुरंत उन्होंने अपने आप को कृष्ण बलराम ने राम लक्ष्मण ने रूपांतरित किया, सब ग्वाल बाल वानर बन गए, रामेश्वर महादेव की स्थापना किया और समुद्र निर्माण किया, वहाँ ब्रिज बना दिया, लंका निर्माण के रावण आया उसका वध कर दिया। वो जगह पर ये लीलाएं निरंतर अलग अलग विविध भाव में होती रहती है। एक बार ग्वाल बाल वहाँ पहुँचे कृष्ण बलराम के साथ और कृष्ण बलराम स्वयं इतरा रहे हैं, वो कुछ ताने मार रहे हैं, बोले आप जानते नहीं हो मैं हम राम और कृष्ण राम और लक्ष्मण है। उन्होंने कहा है थोड़े तो ग्वाल बाल हो, बड़े बखान कर रहे हो अपने आप का, हाँ इस बार स्वयं बोल रहे हैं कि मैं राम लक्ष्मण हूँ, भाई रूप दिखाओ तो मानोगे, हम मानेंगे। तो उन्होंने फिर वो अपने आप राम लक्ष्मण का रूप दिखा के वही लीला की है। तीसरी बार साथ में आए तो सब गोपियों ने कहा हमें जरा अच्छी तरह रिझाओ आप, अच्छा आप रामलीला हमको करके दिखाओ। तो एक नाटक मंडली इकट्ठा हो गई, प्रभु राम कृष्ण राम बने, लक्ष्मण का रोल बलराम ने किया, सब बांदरों का भेष जो है वो ग्वाल वालों ने पहना और सुंदर एक पटकथा लिखित नाटिका प्रस्तुत की सबके सामने। इस प्रकार से धाम में विविध रूप में वही लीला बार 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 होती रहती है। लीला वही है लेकिन इसमें इतनी विविधता है हर समय पर। इस रूप में सभी स्थानों पर ब्रज में अयोध्या में प्रभु राम और कृष्ण की लीलाएं होती रहती है। तो वो है काम्य मन की लीला, उस जगह को कहते हैं रामेश्वर महादेव सेतु बंध श्रीलंका अशोक वाटिका, आज भी वहाँ पर उपस्थित है। मैं जब पहली बार गया था ना, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे वो ब्रिज देखकर। सब खेत के बीच में एक लंबा शिलाओं का लाइन है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। तब तक मैंने सुना था कि ऐसे है, दूसरी कथा। तो अगली बार क्या हुआ, यशोदा माई अपने मायके गई थी। उनका मायका किधर है पता है लोगों को? उनका मायका होगा कि नहीं होगा? आ जाओ ब्रज में, आ जाओ कभी यात्रा में आ जाओ तो आपको ले जाएंगे। मेहरानो ये उनका मायका है, वो नंदगांव से 8 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर सीधा काम्यवन की ओर और 5 किलोमीटर अंदर गांव में। बहुत सुंदर देहात है, आज भी वहाँ पर सुंदर रमणीय ब्रज का वातावरण है। कोई शहरीकरण नहीं है वहाँ पर, कोई बिल्डिंग कोई बड़ा बड़ा कुछ नहीं, साफ आराम से लोग रहते हैं। जब चाहे जाते हैं स्वागत करते हैं, प्रेम से बिठाते हैं, रस्सी डालते हैं, रस्सी खाट डालते हैं, कंबल बिछाते हैं, बड़े प्रेम से लड्डू खिलाते हैं, प्रेम से बिना पूछे लड्डू लेके आते हैं खिला देते हैं। हर बार का अनुभव है, ये ब्रज का सही भाव है। कोई व्यवसायीकरण नहीं है वहाँ पर, लोग बड़े प्रेमी होते हैं, सबको स्वागत करते हैं बड़े प्रेम से, कोई अपेक्षा रखते नहीं कोई देगा मुझे, ये सही ब्रजवासी है। तो वहाँ गई थी यशोदा माई, रोहिणी भी गई थी बलराम जी को लेकर, यशोदा भी गई थी बालक कृष्ण को लेकर। और आप जानते हैं ना कि जब ये बालक और कहीं जाते हैं, समझो अब परिवार ट्रेन में जा रहे हैं, समझो आप पति पत्नी हो और आपके छोटे छोटे बालक हैं वो आपके साथ में हैं, तो आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ वो बच्चे तुरंत मित्रता कर लेते हैं। माता पिता शाम तक बात नहीं करते हैं, शाम के बाद में फिर बात करते हैं एक दूसरे से। तो माता पिता को जरा अपना अहम होता है तो जल्दी मित्रता नहीं करते, लेकिन बालक जो है 2 मिनट के अंदर मित्रता करते हैं। पहचान हो नाम मालूम हो नहीं हो, खिलौना शेयर करते हैं और दिन भर खेलते हैं। उस प्रकार से मेहरानों गांव में वो नए थे, लेकिन तुरंत कृष्ण बलराम ने मित्रता की सारे ग्वाल बालों से। दिन भर खेले, इतने खेले इतने खेले कि शाम को आकर कह रहे मैया पाम दुख रो है पैर में दर्द हो रहा है। आप सबको पता होगा ना, सारे अपनी माताओं ने अपने बच्चों के पैर दबाए होंगे ना रात को, सब आके बच्चे बोलते हैं मैया पैर दुख रहा है। तो गोद में आए, कृष्ण बलराम को स्तनपान कराया, बहुत सुंदर स्नान कराया, फिर पैर दबाए दबाए फिर उनको नींद आने लगी। फिर कन्हैया बोलते हैं मैया कुछ कहानी सुना दे, बोले कौन सी सुना दूँ, राम की सुना दे। ठीक है, राम की कहानी सुनाना शुरू किया। तो मैया कहती है देखो मुझे पता कैसे चला कि तुम सोए हो कि जग रहे हो, तुम हूँ 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 करते रहो तो मैं समझूंगा कि ये तो सोया नहीं है, अभी सुन रहा है, सोने का प्रयास कर रहा है लेकिन जगा है अभी तक। तो जब तुम हूँ करना बंद करोगे मैं कथा बताना बंद कर दूंगी। ऐसे करते करते मैया ने प्रभु राम के जन्म की कथा से आरंभ किया, वो पूरा करते 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 विवाह हो गया राम का, और दूल्हा दुल्हन अयोध्या आए, बहुत समय निवास किया, और फिर कई कई का उत्पात हो गया, फिर उनको वनवास हो गया, फिर वन में गए, फिर वहाँ पर राक्षसों का वध किया, फिर अचानक रावण आया ऋषि का भेष करके और सीता को उठा के ले गया। तब लक्ष्मण जंगल में, लक्ष्मण पहरा दे रहा था, राम चले गए थे किधर, और उसके बीच में सीता का हरण हो गया। अभी तक तो हूँ 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 करके सुन रहा है। ये बात सुनते ही जो छलांग लगा के उड़ा, हाँ कन्हैया उड़ गया पूरा, और ऐसा त्वेष, उसके होंठ कांप रहे हैं, आंखें लाल लाल है और पुकार रहा है लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष लेकर आओ, मैं अभी रावण का वध करता हूँ। तो वो देखकर जो सोया हुआ बलराम था वो भी उठ गया जोर से, वो भी धनुष कहाँ है धनुष कहाँ है। दोनों मैया बहुत अचंभित हो गए, क्या हो गया अभी तो सो रहे थे। कहानी ऐसे सुननी चाहिए, समझे, कहानी ऐसे सुननी चाहिए। ऐसे एक राजा थे कुलशेखर, वो रामायण की कथा सुनते थे ना, तो जब ही वो सीता का हरण हो गया ना तो उसने अपनी सेना का आदेश दिया, चलो सब सेना हम लंका पार करके सीता को वापस लेके आएंगे। तो पूरा सेना लेकर आधे समुद्र में चले गए थे वो। सब ऋषि मुनि समझा रहे, अरे नहीं भाई वो पुरानी कथा है, बहुत पिछले युगों की कथा है, अभी तो सीता देवी अच्छी अपने घर पे राम के साथ में अयोध्या धाम में निवास कर रही है, चिंता मत करो। लेकिन वो कहाँ सुन रहे, वो तो पूरा आवेश में थे पूरे। राजा कुलशेखर दक्षिण भारत में मद्रास देश में। तो कथा डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए, तब जाकर कथा का लाभ होता है। हाँ, कथा के साथ साथ अनेक चैनल नहीं चलने चाहिए, मन के, बंबई के, दिल्ली के, इधर के, उधर के, घर के, बाहर के। जब कथा होती तो कथा में रहना चाहिए और वो भी जागृत रहना चाहिए, निद्रा देवी के लोक में आकर रहना नहीं चाहिए। तो बहुत देर तक कांपते रहे वो, अभी तो थके हुए थे, अभी एकदम कांप रहे, लाल होकर पुकार रहे, लक्ष्मण लक्ष्मण। बहुत देर के बाद मैया ने दोनों समझाया बालक को, अरे रुको रुको, वो तो पिछली युग की बात है, अभी तो सीता देवी आराम से रह रहे सीता राम के साथ। तो धीरे धीरे ठंडे हो गए, सो गए। फिर दोनों मैया बात करते हैं, क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। तो एक मैया कहती है, अरे वो क्या है ना, वो दिन में जब खेलते ना तो वहाँ पर बहुत नाटक करते रहते हैं, रामलीला के, नरसिंह लीला के, इसके उसके। तो वही बच्चों को रात में भी चलते रहते हैं मन में, उनके दिन भर जो खेलते हैं वो रात भर भी वो झगड़ा करते रहते सपने में, तो वही कुछ आवेश आ गया होगा। लेकिन आचार्य हमारे बताते ऐसा नहीं है, वो ऐसे बताते हैं कि ये सत्य है कि वो राम और लक्ष्मण ही थे, अर्थात ब्रज में माधुर्य लीला के क्षेत्र में वो अपना ऐश्वर्य लीला प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्रज का माधुर्य इतना गहरा और इतना गाढ़ा और इतना तेज है कि उसके प्रभाव में इनका प्रकट किया हुआ ऐश्वर्य टिक नहीं पाता है वहां पर। उन्होंने कुछ देर तक तो राम का दर्शन दिया उनको ऐश्वर्य का, लेकिन वो टिक नहीं पाया। माताएं क्या सोच रही है, हाँ बच में खेलते खेलते कुछ लीला करते थे उसकी याद आ रही है उनको, मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा है ना उनको, तो तुरंत हाथ जोड़ के, अरे होम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा सहस्त्रपाद सब भूमि विश्वतो रुत्वा अत्याधिष्ठ तशांगुलम करके तुरंत सूक्त आरंभ कर दिया प्रार्थना का, अरे विष्णु है मेरा भगवान। मुंह बंद किया सब भूल गई, तुरंत गोद में लगाया स्तनपान किया। वो तो चार भुजा वाले बन गए, रगे की बार रास्ते में। तो राजा ने पूछा, कहीं कृष्ण को देखा है, दो भुजाएं पिघल गई उनकी, ऐश्वर्य टिकी नहीं पाया, पिघल जाता है ऐश्वर्य। राम राधा रानी और गोपियों के और ब्रजवासियों के प्रेम के सामने कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट करने का प्रयास करने पर भी टिक ही नहीं पाता है, पिघल जाता है पूरा। तो इस प्रकार से आप अभी मेहरानों जाएंगे ना, तो मेहरानों में राम लक्ष्मण का दर्शन है और मैया का दर्शन भी है, तो आप लगे अरे यहाँ पर तो कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। तो उसके पीछे कथा ये है, वहाँ पर राम का दर्शन क्यों है कि वहाँ पर रोहिणी और यशोदा मैया को कृष्ण बलराम ने राम लक्ष्मण का दर्शन दिया था, धनुर्धारी, वो दर्शन वहाँ पर है। और कौन सी लीला है, देखो वो ये वहाँ पर ना हाउ बिलाऊ है, कितना लोगों ने दर्शन किया हाउ बिलाऊ का, अभी तो वहाँ पर है भी नहीं चोरी चले गए, कुछ कुछ ला के रखे वापस। वो कंस के सेनापति थे हाउ बिलाऊ, पिता पुत्र थे और दो साथी भी थे उनके। जब ये लोग शिफ्ट कर दिए ना गोकुल से, वो यहाँ पर आ गए नंदगांव बरसाने में, तो रोज की तरह राक्षस वहाँ पर भी पहुँचा। तो उस दिन तो सब शिफ्ट हो गए थे, तो राक्षस ने कहा पर कोई है ही नहीं गोकुल में, तो सेनापति को भेजा दो और दो चार लोगों को। वो उत्तर दिशा में ढूंढते 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 नंदगांव पहुँचे और जैसा वर्णन सुनाया था वैसे दो बालक मिले, बहुत बालकों के बीच में खेल रहे हैं। तो उनको जैसे पकड़ने गए ना तो पत्थर हो गए, क्यों, क्योंकि शांडिल्य मुनि का शाप था कि जो भी नंदगांव में आएगा राक्षस भाव में वो पत्थर बन जाएगा। तो इसलिए आते ही प्रवेश करते ही पकड़ना दूर रह गया, पकड़ने के पहले ही पत्थर बन गए। और वो जो हाउ बिलाऊ है वो बड़े ऐसे विशाल पत्थर की मूर्तियां थी, हमने जब दिखा था 86 में बहुत विशाल वहां पर थे, लेकिन फिर चोरी चले गए वो, फिर ढूंढ के लाया गया उनको, टूटे फूटे अवस्था में अभी भी है। लेकिन वो उस पर यशोदा माई ने बहुत प्रेम किया, यशोदा माई के लिए बहुत अनुकूल थे वो, क्योंकि उनको दिखा दिखा कर वो डराते थे कृष्ण बलराम को, देखो हवा आएगा हवा आएगा, देखो पीछे आ रहा है, तो पीछे मुड़ के मत देखना, आगे भागना, तो भाग के घर पे जाते थे, पीछे कुछ नहीं है। लेकिन वो हाउ बिलाओ का नाम लेके उनको हमेशा डराते थे। तो हाउ बिलाओ पर बड़ी कृपा थी यशोदा मैया की। तो एक दिन कृष्ण भी बड़े उद्दंड है, उन्होंने कहा देखो शरारत करते हो, देखो हवा आ रहा है। बोलता है कि मैंने इतने सारे युगों में इतने सारे अवतार लिए, पाताल से लेकर ब्रह्मा लोक तक, यानी हवा का दर्शन नहीं किया मैंने कभी। तो यशोदा मैया कहते हैं तो बाबड़ा है को का, हाँ तुम तो मेरा लाला है, तुम जैसे बात करो जैसे भगवान हो, अवतार तो भगवान लेते हैं, और तुम ऐसे बात करो कि तुमने अवतार लिए, कौन सा भगवान हो तुम, चुप रहो तुम, ये उद्दंडता मत करो, ऐसी बात करना अच्छा नहीं है। तो उसी समय हाउ बिलाव के सामने कृष्ण भगवान ने दशावतार का दर्शन दिलाया माता को। तो माता देखते रह गई, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, सब दर्शन दिलाया एक साथ में, और कुछ ही क्षणों में भूल गई क्या देखा था उसने। लेकिन हमारे लिए वर्णन है अभी कि हाउ बुलाओ के पास भगवान ने यशोदा मैया को दशावतार का दर्शन दिया था, उसमें राम का भी दर्शन दिया। और एक स्थान है अप्सरा कुंड, वो गोवर्धन में है, पुंचरी का लोठा बाबा जो है ना उसके सामने है वो। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने सारी गोपियों को 24 अवतारों का दर्शन दिया था। वहाँ पर भी प्रभु रामचंद्र का अवतार का दर्शन दिया था उन्होंने गोवर्धन के तलेटी में। तो इस प्रकार से राम और कृष्ण अलग नहीं हैं, और उनकी लीला वो जो है वो साथ साथ चलती रहती है। लेकिन राम और कृष्ण की लीला में फ़र्क इतना है कि प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के ऐश्वर्य के साथ में आए, वो सारा ऐश्वर्य दिखाया वहाँ पर। लेकिन श्री कृष्ण सारा ऐश्वर्य छोड़कर आए, कोई भी ऐश्वर्य स्वीकार नहीं किया उन्होंने। यहाँ तक कि मैं भगवान हूँ ये भी उन्होंने पहचान भी छोड़ दी, मैं केवल यशोदा का लाला हूँ और मेरे मित्रों का सखा हूँ और मेरे गोपियों का सखा हूँ, इस तरह से उन्होंने व्यवहार किया पूरी तरह से। क्योंकि वो प्रेम का जो आस्वादन है वो ऐश्वर्य के साथ में नहीं हो सकता है। ऐश्वर्य जो है वो प्रेम के लिए एक बाधा है। जितना ऐश्वर्य है, कीर्ति है, पद है, धन है, वो प्रेम के बीच में एक अवरोध है। तो कृष्ण को वो कहते हैं ना उसको निखालस यानी निस्पृह, निरपेक्ष, निस्वार्थ, स्वच्छ, शुद्ध, तम प्रेम का अनुभव करने की इच्छा थी, इसलिए वो वैकुंठ का सारा ऐश्वर्य छोड़कर पृथ्वी पर कन्हैया बनकर आए थे ताकि कोई उनको पहचाने ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, समझो कोई क्रिकेटर है बड़ा बड़ा मशहूर, उसको मोजा खरीदना है, समझो सर्दी लग रही है मोजा खरीदना है, तो वो मोजा नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी जाएगा मोजा खरीदने सब फोटोग्राफर पीछे आ जाएंगे उसके। वो ये नहीं बोलता मुझे वो लाल रंग का दिखाओ, वो काला रंग का दिखाओ। हम लोग कैसे हैं, 50 मोजा निकालते हैं, वो एक खरीदते हैं, वो जो सुख है ना वो 50 निकालने का। अभी आप जाएंगे औरतें बोले लाल रंग की साड़ी दिखाओ, वो लाल रंग की नहीं, गुलाबी रंग की दिखाओ, वो ये चॉकलेट रंग की दिखाओ, वो काले रंग की मत दिखाओ, वो पट्टा वाला दिखाओ, झालर वाली दिखाओ। इसमें भी एक मजा होता है ना, 50 साड़ियाँ निकाल के एक साड़ी खरीद के बोले बाद में बोलेंगे कि नहीं नहीं ये भी रखो बाद में आते हैं। ये सामान्य व्यक्ति को ये सुख मिल सकता है, लेकिन प्रसिद्ध व्यक्ति को ये सुख नहीं मिल सकता है। और अगर उसको प्रेम से 50 मोजे देखकर अगर मोजा खरीदना है तो उसको ऐसे देश में जाना पड़ेगा छुट्टी मनाने के लिए जहाँ कोई क्रिकेट नहीं खेलता होगा, कोई पहचाने गए नहीं, वो तब जाकर वो मोजा खरीद सकता है। वैसे ही वैकुंठ में अगर किसी के गले में हाथ डालना है बोले चलो गोटी खेलते हैं, वैकुंठ में हो नहीं सकता है। भगवान ऐसे भाव में रहते हैं, लक्ष्मी और भगवान, कि गोटी खेलने का दिल भी हुआ ना गुल्ली डंडा खेलने का तो भी बोल नहीं सकते किसी को मुझे गुल्ली डंडा खेलना है। अभी गुल्ली डंडा खेलना तो है तो क्या करें, फिर सब कुछ छोड़कर ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ कोई उनको पहचानता नहीं कि वो भगवान है। नोबडी नोज, कोई जानता नहीं है कि भगवान है। कोई बोलता मेरा लाला है, कोई मेरा सखा है, कोई सखी है, सब यही जानते हैं बस, कोई जानता नहीं भगवान है। और बताया भी ना बीच में कभी तो भी बोलते है तू कैसा भगवान। गोवर्धन को उठाया ना, गोवर्धन को, तो उधर एक लीला है विस्मय लीला। तो उसमें क्या हुआ, रोज शाम को बैठते हैं ना सब बाल बाल बड़े बाल बाल 84 खंबा मीटिंग करते हैं कि आज क्या हुआ। तो गोवर्धन को उठाने के बाद बहुत लंबे समय तक मीटिंग नहीं हुई ना, सब लोग गोवर्धन के अंडर ही थे, तो समाप्त हो गए तो फिर मीटिंग में आ गए। बोले अरे तेरे लाला तो क्या लाला है तेरा, तू तो एक पत्थर भी उठा ना सके, तो पूरा शिला पहाड़ उठा लिया, तुम्हें शिला भी ना उठा सकते। बहुत गौरव किया। बाद में बोले तुम्हारा बालक जो है ना वो कोई ऋषि मुनि होगा, कोई सिद्ध होगा, कोई देवता होगा, नहीं साक्षात भगवान होगा। नंद बाबा पेट पकड़कर इतना पकड़ पकड़ कर इतना हंसे इतना हंसे, बोले कोई देवता थोड़ी होता है, देवताओं को अपने इंद्रियों पर बड़ा निग्रह होता है, बड़े शिस्त में चलते हैं वो, बड़े मर्यादा में चलते हैं। ये तो जरा सा मक्खन नहीं मिला तो मटका फोड़ देता है। और ऋषि जो होते हैं बड़े इंद्रिय का नियंत्रण में होते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं, इसको जरा सा कुछ हो गया तो सबको मार पीट करके बड़ा हंगामा रचा देता है। और आप कहते हो भगवान है, अरे आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना, गड़गड़ाहट, तब डर के मारे मैया के गोद में छिपता है, बोले मैया डर लग रो है। ये बात है। तो ये सब गुण जो है ये भगवान के ऋषि के देवता के कैसे हो सकते हैं? तो लीला तो प्रकट किया गोवर्धन को उठाने का, ऐश्वर्य दिखाया, लेकिन वो ऐश्वर्य जो है वो टिक नहीं पाया। जब उसका वर्णन होने लगा तो सब ने काट दिया उस बात को, और कहते हैं सब लोग बैठे थे अपने अपने आसन पे, सब लोग पेट पकड़ के जमीन पे गिर गए, हंसते 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 ऐसे लोटपोट हो गए और भूल गए कि सब लोग ने कहा कि ये भगवान है। तो ऐसा है विस्मय लीला। इसके कारण, इसका कारण समझ में चाहिए कि ब्रज में केवल भगवान जो है प्रेम को आस्वादन करने के लिए आए, और उनके समझ, उनको अगर समझना है, उनकी लीलाओं को समझना है, तो प्रभु रामचंद्र की लीलाओं में जो मर्यादा प्रस्थापित की गई है उसको हमारे जीवन में हमको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर उनकी प्रेम माधुरी हमको समझ में आएगी। जब तक मर्यादा का पालन नहीं होता है तब तक प्रेम की पराकाष्ठा समझ में नहीं आती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।